नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी दिल से दिल तक में। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है विस्थापित सती। विस्थापित का मतलब होता है जो अपने स्थान से हटाया गया। इसकी लेखिका है सिमी हर्षिता। दोस्तों, ये कहानी 1984 के दशक की है, जब सिखों पर बुरी तरह अत्याचार हुए थे। उन्हें शक की नजरों से देखा जाता था। तो ये उसी समय के एक सिख नवयुवक की कहानी है, जिसको अपनी जान बचाने के लिए अपने धर्म यानी अपने केशों का त्याग करना पड़ता है।
मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनड़े दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनड़े दे, पाओ नी पाओ एनु शगना दा गाना, पाओ नी पाओ एनु शगना दा गाना, गाने दे फुम्मन जा मेरे बनड़े दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनड़े दे।
आजकल मौसम बसंत या वर्षा का नहीं, शादियों का है। शादियों के रंग बिरंगे निमंत्रण पत्र और शगुन के लिफाफों की बाहर चारों ओर छाई हुई है, पर गुरजीत की शादी नहीं हो पा रही है। कभी यार दोस्तों के बारात में शामिल होना और भांगड़े के द्वारा अपनी खुशी व्यक्त करना, कभी रिश्तेदारी में आने वाली बारातों की अगवानी करना और रिश्ते के आधार पर मिलनी करते हुए किसी के गले में हार डालना और किसी से डलवाना, पर अपनी जयमाला का अवसर उसे नहीं मिल पा रहा। घर के सामने वाला पार्क एक दिन को भी खाली नजर नहीं आता। एक शामियाना उतरता है और दूसरा तन कर खड़ा हो जाता है। कभी किसी दिन ऐसे भी शुभ मुहूर्तों की टकराहट होती है कि एक ही शामियाने में लगातार 3-3 शादियां हो रही हैं। ऐसे शादियाना माहौल में गुरजीत के सिर पर शादी की धुन सवार हो गई है। चट मंगनी और पट ब्याह वाला उतावलापन हावी है उस पर। बस आज और अभी ही शादी हो जानी चाहिए, ऐसा बौराया हुआ है वो। अखबार में विज्ञापन छप कर आ गया है, लड़की वालों के फोन और पत्र भी आने लगे हैं, पर शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि शादी के लिए एक अदद लड़की की आवश्यकता है और लड़की के माँ बाप की सहमति की भी। गुरजीत सुंदर है, स्वस्थ है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, अच्छा वेतन है, ऊपर से हर रोज का यात्रा भत्ता हो जाता है, कंपनी अच्छी है, आगे प्रोन्नति के अवसर भी हैं, पर फिर भी शादी नहीं हो पा रही है। किसी लड़की के माँ बाप को अपनी बेटी के हाथ पीले करने की जल्दी ही नहीं मच रही। लोग कभी कभी अपनी बेटी को कुएं तक में धकेल देते हैं, पर इस बहती गंगा में हाथ धोने में शशोपंच में पड़ गए हैं। गुरजीत जब किसी घरेलू महफिल में सिर हिला हिला कर मंद मंद मुस्कुराते हुए मोहम्मद रफी की आवाज में गाता है, तो लगता है वो दुनिया का कैसा मस्त मौला इंसान है, पर उसे दुख है कि उसकी शादी नहीं हो पा रही। माँ भली और भोली है, पिता राजपत्रित अधिकारी है, अपना मकान है और गुरजीत उस सबका अकेला वारिस है, पर फिर भी तो शादी नहीं हो पा रही। हाथ में ब्रीफकेस और उसमें दवाओं के सैंपल लेकर शहर शहर जाना, डॉक्टरों से मिलना, केमिस्टों की यहाँ हाजिरी देना, नई आई दवाओं के महत्व की सूचना देना, सप्लाई के ऑर्डर लेना और फिर चंडीगढ़ लौट आना। डॉक्टर और केमिस्ट उससे प्रभावित हो जाते हैं, पर लड़की वाले उससे प्रभावित नहीं हो पा रहे। अब तक आपके दिल में क्यों, भला क्यों, अवश्य अंकुरित हो चुका होगा, पर इस पेचदार प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको पानीपत जाना पड़ेगा। वो पानीपत का मैदान नहीं जहां बाबर इब्राहिम लोदी में, अकबर और हेमू में, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राजभाऊ के बीच युद्ध हुआ था और हर बार दूसरे पक्ष के पराजय का मुंह देखना पड़ा था। जाना पड़ेगा पानीपत शहर और पूछना पड़ेगा कि अमुक केमिस्ट की दुकान कहां पर है। यदि समय 84 के आसपास का है और आपके चेहरे पर सिख होने की मोहर लगी हुई है तो इस पूछने का मतलब ये है कि आप शहर में नए हैं और आपके इरादे नेक नहीं हो सकते। यदि इधर उधर कोई अदले बदले की वारदात हो चुकी है तो आपका वही हाल होगा जो भागते भूत की लंगोटी का होता है, यानी कि धोबी पाट। गुरजीत ने जिन जिन से रास्ता पूछा उनके कान खड़े हो गए और वे असूचित भाव से उसके पीछे हो लिए। जैसे ही गुरजीत ने दुकान में कदम रखा कि बाहर भयावह शोर मच गया। एक आतंकवादी आया है, उसके हाथ में ब्रीफकेस है, उसमें बम है। वो चुपचाप रखने के लिए आया था पर पकड़ लिया गया है। उसके पास एक AK-47 राइफल भी है। दुकानदार घबरा गया, गुरजीत भी घबरा गया और बाहर खड़े लोग तो घबराए हुए थे ही, इसीलिए उन्होंने झट से आतंकवादी की गर्दन दबोच ली। पल भर में ये दहशत और विजय भरी सूचना सारे बाजार में शॉर्ट सर्किट की आग की तरह फैल गई थी। दुकानों के शटर चीखते हुए नीचे आ गिरे। हर व्यक्ति उसी ओर आंधी की तरह दौड़ रहा था और आग को भड़काने में पूरी तरह ईमानदारी से सहयोग दे रहा था। उत्तेजित भीड़ की तूफानी लहरों ने गुरजीत को कई बार ऊपर उठाकर नीचे धड़ाम किया ताकि सभी उस आतंकवादी की शक्ल सूरत देखकर अपनी प्यासी उत्सुकता को पानी पिला सके। भीड़ की भेड़ चाल जीप से हथियार का काम ले रही थी और तरह तरह के फतवे जारी कर रही थी। बम वाले उस हत्याकांड में इसका भी हाथ था और अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बहाने यहाँ कोई कांड करने आया है। इससे पहले कि ये तुम्हें मारे, मार डालो उस साले को, पकड़ लो इसके हाथ, कहीं ये साइनाइड का कैप्सूल खाकर खेल खत्म न कर दे। अरे ये वही आतंकवादी है जिसके सिर पर 2,00,000 का इनाम है, किसी ने कहा। अरे इसकी पगड़ी उतार कर देखो, नहीं उसमें कुछ छिपा कर न रखा हो। पगड़ी एक हाथ से दूसरे हाथ में होती हुई सिर पर लौट आई थी, पर ये वो पगड़ी नहीं थी जो उसने सुबह संवार कर बांधी थी। बचपन से ही माँ ने उसे समझाया था कि किसी को जूड़े पगड़ी को हाथ नहीं लगाने देना, पर आज वो अपनी इज्जत की रक्षा के लिए विरोध या हाथापाई की स्थिति में नहीं, बर्दाश्त की लाचारी में फंसा हुआ था। अंदर खोलती तूफानी लहरें अपने आप से टकरा कर छटपटाती हुई वापस लौट जाती। अब तक पुलिस भी आ गई थी और उसे हथकड़ी पहना कर थाने ले गई। भीड़ पीछे पीछे धूल उड़ाती हुई भक्तियां कसती हुई हाथ में डंडा थामे थानेदार का सवाल गरजा, ओए आतंकवादी, यहाँ आने का मकसद क्या है तेरा? तेरे किस पाप ने तुझे यहाँ भेजा है? इस ब्रीफकेस में क्या रखा है? खोल इसे। अपने आने का रोजी रोटी से जुड़ा उद्देश्य बताकर जो ही वो झुका त्यों ही भीड़ सुरक्षित दूरी पर दौड़ गई। गुरजीत ने ब्रीफ केस खोला, दवाओं के सैंपल और उनमें जुड़े कागज पत्तर निकाल कर दिखाए। भीड़ चौकसी से चिल्लाई, अरे क्या पता हमारे लिए दवा के बदले कैप्सूलों में जहर हो, क्या पता शीशियों में मिनी बम हो। भीड़ की दहशत गुरजीत के अंदर समाती जा रही थी। पता नहीं आज मैं घर लौट कर जा पाऊंगा या नहीं, पता नहीं थाने में बंद कर कितना मारेंगे कुछ उगलवाने के लिए। कल अखबार में खबर छपेगी, एक आतंकवादी पुलिस भिड़ंत में मारा गया। तभी उसने सुना, ओए डाल दे इसको लॉकअप में, बाकी रात को देखेंगे। उसे लगा जिंदगी के दरवाजे सचमुच बंद हो रहे हैं। चेहरे के घावों पर बहते हुए आंसुओं के साथ हाथ जोड़कर उसने बार बार कहा, अरे राज साहब जी, एक बार आप कंपनी के बॉस को फोन करके पूछ लें, फिर आपकी जो इच्छा हो करे। ओए मार फोन इसके बाप को, देखें क्या कहता है। लोग न जाने कहां से आतंकवादी के बदले चूजा पकड़ कर ले आए हैं। कंपनी के ऑफिस में फोन किया गया और पूरी तरह से तसल्ली हो जाने पर घर का अता पता नोट कर तथा फोटो खींचकर उसे छोड़ दिया गया। पर जिसे छोड़ा गया था वो पहले वाला गुरजीत नहीं था, जो धर्म को लेकर भेदभाव वाली बातें करना ओछापन समझता था। उसे लगा धर्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें अब हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, होगा वो जो नेता सोचता है और भीड़ कहती है। पगड़ी बगल में दबाए जो हाल बेहाल दहकते दिल से वापस लौट रहा था, वो बार बार पीछे देख रहा था, चंडीगढ़ वाली बस छोड़ने की उतावली कर रहा था। वो एक ही सोच बार बार सोच रहा था, इन सारे हादसे का कारण मेरा ये बाहरी नक्शा ही है जो आजकल लोगों के दिलों में संदेह का सायरन बजा देता है। उसकी ये सवालिया सोच और भय उसे अजनबी दिशा की ओर धकेल रहे थे। चंडीगढ़ के बस अड्डे पर उतरकर उसने बाजार की ओर रुख किया। सैलून की दुकान ढूंढने में उसे 2-3 चक्कर लगाने पड़े, थिटकना पड़ा और अपने को बटोरना पड़ा। अपने नए ग्राहक की बात सुनकर नाई की अभ्यस्त कैंची भी डावाडोल हो गई। क्यों ये जुल्म करते हो, क्यों मुझे पाप में ढकेलते हो, घर जाओ, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। सिर पर बंधे जूड़े और दाढ़ी को उसने नाई की कैंची के हवाले कर दिया और पगड़ी को लपेट कर ब्रीफ केस में बंद कर दिया। अब उसने आईना देखा तो चेहरे ने कहा, अब तुम्हें कोई आतंकवादी नहीं कहेगा। कुछ रुपए खर्च करके तुमने कितनी आसानी से उस भयानक ठप्पे को मिटा दिया है। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, देश के किसी कोने में भी चले जाओ। पहले तुम लाखों की भीड़ में एक ही नजर में अलग से पहचाने जाते थे, अब तुम्हें पहचानने के लिए कम से कम 2 नजरों की जरूरत पड़ेगी। उसने अपने व्यक्तित्व को किसी राजनीतिक पार्टी की तरह तो फाड़ कर दिया था। पगड़ी वाला सिर पंजाब के लिए और जुल्फों वाला सिर हरियाणा के लिए। दाढ़ी की केवल जड़े रहने दी, परिस्थितिवश कोई मुसीबत आ पड़ने पर सामने वाले को दोनों तरह से भरमाया जा सके। अरे मैं तो तुम्हारा ही धर्म भाई हूं, मुझे क्यों मारते हो। एक दिन बैंक जाना हुआ, काउंटर पर बैठी युवती ने कहा, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात पूछू। पूछिए जी। क्या आप भेष बदलते रहते हैं। हाँ जी, मैं 2-in-1 हूँ, जब जैसी जरूरत पड़े वो बटन दबा देता हूँ। हादसे वाले उस दिन पिता सब कुछ देख सुनकर इस तरह बोले थे जैसे किसी अंधेरी गुफा से आवाज आ रही हो। ठीक है, जैसे लड़के की इच्छा और जिसमें उसे सुरक्षा मिलती हो या महसूस होती हो। अरे इसका काम धंधा ही ऐसा है जिसमें बार बार अजनबी शहरों में जाना पड़ता है। इस बार तो सवाल जवाब में ही बचकर लौट आया है। यदि कभी ऐसा ना हो पाया तो भीड़ ने पुलिस के आने का इंतजार ना कर सारा फैसला खुद ही कर लिया होता तो आज का वक्त केश और पगड़ी पर भारी है। कौन से हमारे 2-4 बेटे हैं कि एक को राजनीति की गर्दिश से जन्मी किसी अंधी बहरी भीड़ के हवाले कर दें। यदि टाढ़ा के तहत ही गिरफ्तार कर लेते तो हम उनका क्या बिगाड़ लेते। कहाँ से सफाई सबूत लाते और कौन हमारी सुनता आज के माहौल में जहाँ हम सब शक के घेरे में कैद हैं। पर माँ ने कठोर प्रश्न किया था, अरे लोग तो अपने धर्म के लिए अपनी जान तक दे देते हैं और तुमने जान के लिए धर्म दे दिया। धर्म देना क्या इतना आसान है, क्या कोई जन्म से मिले संस्कार और घटी को बदल या भूल सकता है। मैंने धर्म नहीं दिया, धर्म की बाहरी पहचान दे दी है। मैं किसी अजनबी शहर में किसी पागल भीड़ से घिर कर कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता। गई जान लौटाई नहीं जा सकती, पर गए केश तो कभी भी बढ़ाए जा सकते हैं, ये तो अपने ही घर की खेती है। गुरजीत के तर्क से माँ के आंसू बह आए थे। हाय गुरजीत, रोज ही तो तुम अरदास सुनते हो, अनेक कष्ट सहारे पर धर्म न हारिया और फिर भी ऐसी बातें करते हो। तुमने अपनी रहत गवा दी, तुमने अपने धर्म की वीरता भरी विरासत और परंपरा पर थूका है। तुमने केशों की ऐसी बेअदबी कैसे की, किस नाई के कूड़े में फेंक आए हो अपना सोहरा जूड़ा जिसे मैंने तुम्हारे जन्म से संवारा था और गुरु की हुजूरों में जिस पर पगड़ी सजाई थी। जाओ लेकर आओ। लेकर आने से क्या होगा, क्या वापस जुड़ जाएगा। फिर माँ ने धर्म के स्तर से हटकर भावना के स्तर पर सुनाया और समझाया भी। अब तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैं तुम्हारे इस कायर रूप को अपना बेटा नहीं मान सकती। तुम देखने में मुझे अब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देखते देखते आदत हो जाएगी तो अच्छा लगने लगूंगा। अरे तुम्हारी लंबाई भी कम हो गई है। तुम्हारी ये फोटो मेरे बेटे की है जो हमारे सोने के कमरे में लगी हुई है। तुम्हारे इस चेहरे पर एक सहज खूबसूरती की जगह दुर्घटना चिपकी हुई दिखाई दे रही है। इस भौंकती हुई खूंखार राजनीति ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जो तुम थे वो तुमने डर कर छोड़ दिया और जो तुम दिखाई दे रहे हो वो भी डर के कारण। क्या अब सारी जिंदगी तुम्हारा डर ही जिएगा? तुम नहीं जियोगे। हाय, कोई मेरा प्यारा बेटा मुझे वापस दे दे।
गुरु वाहे गुरु सूरा सो पहचाने जो लड़े दिन के हेत पुरजा कट मरे कब हो न छाड़े खेत गुरु वाहे गुरु।
माँ की आंखों में से आंसू छह रहे थे पर गुरजीत की चुप्पी फिर भी नहीं टूटी थी और फैसला नहीं बदला था। उसे लगा वो तो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़कर लौटा है और माँ को उसके जूड़े पकड़े की पड़ी है। माँ स्थिति की गंभीरता को नहीं समझते और धर्म से जुड़ी कच्ची भावनाओं में बहती जा रही है। डैडी बाहर काम पर जाते हैं इसीलिए वे मेरी परेशानी को समझते हैं। घर पर बैठी माँ को कुछ नहीं पता। मम्मी अब आप बोलती ही जाएंगी या चुप भी होंगी? आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। यदि ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। और माँ रूठे भाव से अबोली हो गई थी। अब अगले दिन के कार्यक्रम के साथ गुरजीत को यह भी सोचना पड़ता कि वहाँ पगड़ी दाढ़ी की जरूरत है या नहीं। जब कभी नाना नानी के यहाँ दिल्ली जाना पड़ता कंपनी के काम से तो सिख का भेष बनाए रखता। वहाँ जाने से पहले ही दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर देता। दिन भर सिर पर पगड़ी और रात को सोते समय दस्तार लपेटे रहता। दस्तार के अंदर का सारा हाल समझते हुए मामा मंद मंद मुस्कुराते रहते और नाना कुछ ना समझते हुए टोकते रहते। क्या बात है, रात में तो सिर को जरा ठंडी हवा लगने दो। आजकल तो कुछ ज्यादा ही सिक्खी का ख्याल रख रहे हो। पहले तो यूं ही नंगे सिर घूमते रहते थे। वो सब कुछ सुनकर अनसुना बना सोया पड़ा रहा था। नाना सुबह 3 बजे गुरुद्वारे जाने के लिए उठे तो देखा कि सामने वाले पलंग पर बेखबर सोए गुरजीत की दस्तार फर्श पर पड़ी हुई है और कटे हुए बाल इधर उधर लटक रहे हैं। इस शांत वातावरण में उनकी अशांत आवाज कलप रही थी। हाय लुट्टे पटे गए एक कित्ता, किधर गया सोहड़ा जूड़ा ते सुच्चे केश। रह रहकर ऐसे भावात्मक ज्वारों और फिर भाटे में बदल जाते। वक्त के गुजरने के साथ सारे सवालों तर्कों ने हार कर हर ओर से मुख सिल लिया था। बात एक तरह से हठी होकर खत्म हो गई थी। ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है करो, किसी की सुननी ही नहीं तो कोई कब तक भौंकता रहे। पर आज उठ खड़ा हुआ है शादी का सवाल। जहां कहीं भी रिश्ते की बात चलती एक ही उत्तर आता, मुझे लड़का तो हमें पसंद है पर हमें सिख मुंडा चाहिए। विज्ञापन में तो आपने सिख लड़के की बात कही थी पर इसने तो केश कटवाए हुए हैं, सिर पर जूड़ा नहीं है, पगड़ी नहीं है, मुंह पर पूरी दाढ़ी नहीं, ये कैसा सिख है? आपने तो अच्छा मजाक किया है, आपको क्लीन शेव सिख लिखना चाहिए था। हमदर्दी की आशा में हर बार दुख और मासूमियत से सफाई दी जाती है कि पगड़ी और केश कहाँ गए और क्यों गए। और सामने से तो टूक उत्तर आता है, अरे जान पर संकट की उस घड़ी में गए तो गए, जान बचाने के लिए बहुत ऊंचे चले गए थे पर अब तक लौटे क्यों नहीं? डैडी और मम्मी उल्हाना देते चेहरे से गुरजीत की ओर देखते और गुरजीत को विवाह की रौनक भरी खुशी का ऐसा बेरौनकी रुख लेना लगता जैसे अपने घर की छत पर निश्चित बैठे हुए अचानक किसी अपरिचित ने धक्का दे दिया हो। हर आगंतुक रिश्ता ना कहकर चलता बनता। एक दिन उसी विज्ञापन के उत्तर में एक लड़की की माँ का फोन आया। उसने पास के गुरुद्वारे में अनौपचारिक ढंग से लड़की लड़के को देख दिखा देने की बात कही। गुरजीत का गिरा हुआ हौसला धूल झाड़ कर उठ खड़ा हुआ। अब तक तो माताओं पिताओं से सामना हुआ था, पर इस बार लड़की का दीदार होना था, इसलिए मामले में रौनक आती नजर आई और सामने वाले पार्क में शामियाना तनता नजर आया। लड़की का दुपट्टे से सिर ढका आधे चांद सा मुस्कुराता मुखड़ा और रंग रूप ने गुरजीत का मन मोह लिया था। गुरजीत जल्दी से हाँ कह देना चाहता था, क्योंकि वो गुरुद्वारा था इसलिए गुरजीत के सिर पर पगड़ी भी थी, पर माँ की नजरें उसकी घास की तरह तराशी हुई दाढ़ी से तिनका ढूंढने लगी। लड़की से बात करने का मौका ही न मिला और लड़की की माँ ने झटपट फैसला सुना दिया। लड़के ने तो केश कटाए हुए हैं, हमें तो गुरसिख मुंडा चाहिए, केश कहाँ शहीद हो गए हैं। लड़की की माँ ने इस बात में कोई रुचि नहीं दी और लड़की को लेकर गुरुद्वारे के अंदर जा बैठी। वे हक पकाए से देखते रह गए। मम्मी डैडी ने खरी खोटी सुनाते हुए कहा, तुम जानो और तुम्हारा विवाह जाने, हमारा तो अच्छा खासा अपमान करवा रहे हो तुम, हम इस सारे तमाशे से बाज आए। शादी के समय लड़की के माँ बाप के भाव पड़ते हैं और यहाँ हम लड़की वालों के पीछे बेगैरतों की तरह भाग रहे हैं और सफाइयां दे रहे हैं तुम्हारी पुश्तरी और तब्बूपन की। एक बार फिर से बैरंग लौटने पर राकेश ने हताश गुरजीत को आसान सी राह सुझाते हुए सलाह दी, चूड़ा पगड़ी रख लो यार, लड़की वालों की लाइन लग जाएगी, एक बार फिर सोच लो। अरे वो लड़की जो तुम्हें पसंद आ गई है उसकी माँ की एक ही शर्त है कि। गुरजीत तैश में आ गया। अरे उस तकिया नुसी औरत को अपनी लड़की की शादी मुझसे करनी है या मेरी जूड़े पगड़ी से? सवाल 2 दिन तक उनके बीच निरंतर टंगा रहा था। फिर एक उपाय सोचा, राकेश चलो उस लड़की के घर चलते हैं, लड़की को किसी तरह पटाने की कोशिश करते हैं, यदि लड़की मान गई तो शायद माँ भी मान जाए, आज एतवार है, लड़की को घर पर ही होना चाहिए। अरे लड़की तो घर पर ही होगी, पर लड़की की माँ भी तो घर पर ही होगी, अरे वो देख लेंगे। वे सुनहरी कल्पना के पंखों पर सवार होकर लड़की से सवाल जवाब का रस लेते हुए उसके घर जा पहुंचे। दरवाजा लड़की की माँ ने खोला तो उन्हें जमीन पर पटक कर कल्पना भाग खड़ी हुई। लड़के को अपने द्वार पर आया देख कर लड़की की माँ ने ठंडेपन से कहा, बेटा मैंने तो अपना फैसला गुरु की हुजूरी में ही सुना दिया था, अब इस आने जाने का मतलब? आपको सिख लड़के से शादी करनी है ना अपनी लड़की की, तो सिख तो मैं हूं ही, अरे केश दाढ़ी नहीं हुए तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है, ये विचार तुम्हारे हो सकते हैं, मेरे नहीं। जीवन में सब कुछ कपड़े की तरह नहीं होता, जब मन हुआ तो पहन लिया, जब मन हुआ तो उतार कर कील पर टांग दिया या देकर स्टील के बर्तन खरीद लिए। यदि तुम सिख हो, अपने को सिख कहते मानते हो, तो फिर सिख दिखने में तुम्हें किस बात का डर है, किससे डर है? आप क्यों भावुक हो रही हैं मेरे इस रूप के प्रति? यदि तुम अपनी जान की सुरक्षा के प्रति इतने भावुक हो सकते हो तो मुझे भी हक है कि अपने विश्वास और मान्यताओं के प्रति भावुक हो। इस संसार में ऐसा कौन है जो नहीं पिट रहा, कहीं अंदरूनी वार हो रहा है तो कहीं बाहरी वार हो रहा है, कहीं राजतंत्र पिट रहा है तो कहीं फौजी तानाशाहों के हाथों प्रजातंत्र पिट रहा है, कहीं बड़े मठाधीशों की गुटबाजी में फंसकर व्यक्ति पिट रहा है, कहीं देशी पिट रहा है, कहीं विदेशी पिट रहा है, कहीं काला पिट रहा है, कहीं गोरा पिट रहा है, कहीं शिया पिट रहा है, कहीं सुन्नी पिट रहा है, कहीं दलित पिट रहे हैं, कहीं स्वर्ण पिट रहा है। क्या डर इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है? तुम अपने गले में कब तक एक गुजरे हुए अभागे कल का मनहूस पत्थर लटकाए रहोगे? तुम कब तक इसी चक्कर में पड़े रहोगे कि कब कहाँ कैसा दिखना है, क्या तुम हमेशा अपनी ही सुरक्षा के बारे में सोचते रहोगे? किसी दूसरे की सुरक्षा के बारे में कभी कुछ नहीं सोचोगे? एक दूसरे के प्रति डर और उसके नीचे छिपे घृणा और अविश्वास वैर के बीज को सदा सदा के लिए जीवित रखना क्या ठीक है? ये छोटे छोटे विष बीज ही समय पाकर विष वृक्ष बनते हैं और भावी पीढ़ियों को खाने के लिए विष फल देते हैं। राकेश बेटा, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? तुम्हारा तो ये जिगरी दोस्त है। मेरा वो दोस्त तो अभी पानीपत से लौटा ही नहीं। मैं रोज उसका रास्ता देखता हूँ और इस अजनबी से पूछता हूँ कि उसका आता पता और जिसके बारे में लोग अक्सर पूछ बैठते हैं, वेयर इज दैट हैंडसम सिख? इसका मतलब यह है कि मैं अकेली नहीं हूँ। आपसी डर और अविश्वास की इस लड़ाई में राकेश बेटा मेरे साथ है। फिर माँ ने गुरजीत को अपना परिचय दिया। बेटा, मेरी लड़की जो तुम्हें पसंद आ गई है, एक दंगाई भीड़ के द्वारा विधवा हुई, उसकी ये माँ आज दहेज के रूप में तुम्हें कुछ भी देने में असमर्थ है, पर किसी लाचारी से ऊपर उठकर तुमसे ये कह सकने की हिम्मत रखती है कि मैं ऐसा दामाद नहीं चाहती जो बहु रुपया हो और जिंदगी में कभी एक और कभी दूसरी तरह की बहुसंख्यक भीड़ की ऊंट में छिपने या सुरक्षा ढूंढने की कोशिश करे और इस तरह की संख्या से पैदा होने वाली दादागिरी और तंगदिली के संख्यों को फैलाने में सहयोग दे। स्वार्थी लोगों ने धर्म का मुखौटा बना लिया है। जब कोई आदमी दूसरा विवाह करना चाहता है तो कागजों पर मुसलमान बन जाता है। कुछ लोग धन और सुविधाओं के लोभ में आकर तथा कथित दानी धर्म की ओर दौड़ पड़ते हैं। आक्रमणकारी शासक अपने लिए सुरक्षित प्रजा का निर्माण करने के लिए लोगों को तलवार के बल पर अपने धर्म में खींच लाते हैं। कई बार नेता धर्म के सहारे कुर्सी की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। इस तरह लोग पहले धर्म को अंधे की लाठी बनाते हैं और जब वो लाठी सहारा बनने के बदले अंधी होकर सिर पर आ पड़ती है तो बिल बिलाते हैं। मेरे बेटे, क्या तुम मुझ जैसी एक विधवा औरत से भी कमजोर हो जो पहले एक अफसर की पत्नी थी और अब उसी दफ्तर में क्लर्क है, पर फिर भी वो हर आई सौगात को अपनी शर्तों के आधार पर ठुकराने की हिम्मत रखती है, क्योंकि जीवन में किसी भी तरह की बनावट नहीं, सहजता ही सर्वोपरि है, उसी में सुख शांति और शक्ति है। मैं चाहती हूँ तुम सहज जीवन जियो, अपने को सारी जिंदगी के लिए एक हादसे का बंधक और अजायब घर मत बनाओ। मेरा दामाद लाखों की भीड़ में अकेला नजर आए और फिर भी आपसी इंसानी विश्वास और भाईचारे के सुनहरे रंग पर कभी कोई आँच ना आए। मेरे जैसे हजारों लोग हैं। सन 84 ने असंख्य घरों में ऐसी पौध को जन्म दिया है। आप उनके बारे में क्या कर लेंगी? एक मेरे वापस लौटने से क्या होगा? तुम ठीक कहते हो। हजारों लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं। ये सदी सारे संसार में विस्थापित है। कुछ लोगों की साम्राज्यवादी ताकतों और युद्धों ने निर्वासित कर दिया है। लोग भाग भाग कर पड़ोसी देशों में सिर छिपाए बैठे हैं और इस तरह से अपने वतन और समाज से दूर हो गए हैं। दूसरी तरह के लोग सांप्रदायिक दुष्चक्र और आतंकवाद के कारण अपने ही देश में अपने घर घाट और हवा पानी से निर्वासित हो गए हैं। अनगिनत लोग बड़े बड़े बांधों और औद्योगिक विकास के नाम पर विस्थापित हो गए हैं। असंख्य लोगों को डॉलरों ने निर्वासित कर दिया है। हर तरह की बढ़ती भूख और बेकारी के दबाव में हमारे मूल्य भी अपनी जड़ों से विस्थापित होते जा रहे हैं और गांव शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अपनी अस्मिता और पहचान खोने के कगार में बैठे विस्थापितों की इस विश्वव्यापी भीड़ की एक भी गिनती कम करने में मेरा हठ यदि सफल हो जाता है तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। उस सन्नाटे में सामने रखा ग्लोब निरंतर घूम रहा था। माँ ने रसोई की दिशा में आवाज दी, बेटी कब से मेहमान आए बैठे हैं और अभी तक पानी का एक गिलास तक नहीं दिया? दरवाजे की ओट में खड़ी मनप्रीत ने उसी पल प्रवेश किया और ठंडी मिठास से भरे गिलासों की ट्रे अतिथियों के सामने की। गंभीर वातावरण एकदम से कोमल हो आया। दोनों दोस्त सब कुछ भूल कर लड़की से कोई बात करने का सूत्र तलाशने लगे। एक सवाल किसी तरह गुरजीत को सूझा, आपने किस कॉलेज से बीए किया है? एमएस कॉलेज से। ऐसा लगता है आपको मैंने देखा है कहीं। यदि आप उस कॉलेज के चक्कर लगाने वालों में से हैं तो जरूर देखा होगा। एक ठहाके से बातों के नए रंग बिखरते चले गए। दोनों दोस्त मनप्रीत के वापस लौटने के सारे रास्ते बंद करने में जी जान से जुट गए। अब माँ की मुस्कुराने की बारी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलता है स्टोरी सुनाने के लिए। तो अगली कहानी के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।